एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज की ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है।
नमस्कार,
आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने 20वीं सदी की कला, साहित्य और सोच पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी।
हाँ, आंद्रे ब्रेटन की अतिवास्तववाद के घोषणा पत्र, मैनिफेस्टोज ऑफ सर्रियलिज्म।
बिल्कुल,
सुनने में शायद लगे कि ये तो कोई आर्ट हिस्ट्री की बात हो रही है ना?
हाँ, लगता तो है।
लेकिन कमाल ये है कि इसके जो विचार हैं वो आज भी मतलब चौंकाते हैं। क्या आज की इस भागदौड़ भरी तर्क प्रधान दुनिया में,
जहाँ हर चीज का लॉजिक चाहिए,
हाँ जहाँ लॉजिक ही सब कुछ है, वहाँ सपनों की, कल्पनाओं की, मन की वो जो अंदरूनी आवाज है, उसकी कोई जगह है? यही सवाल ये किताब उठाती है।
बिल्कुल, और ये सिर्फ पेंटिंग या कविताओं के बारे में नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम वास्तविकता मानते किसे हैं।
सही बात है।
क्या सिर्फ वही सच है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, या तर्क से समझते हैं, या फिर हमारे मन की गहराइयों में, हमारे सपनों में कोई ज्यादा बड़ी, ज्यादा असली दुनिया छुपी हुई है?
तो चलिए इसी सोच की पड़ताल करते हैं आज।
हाँ, करते हैं।
तो शुरू करते हैं उस शख्स से जिनके विचारों ने ये पूरी हलचल मचाई। आंद्रे ब्रेटन कौन थे ये?
आंद्रे ब्रेटन 1896-1966 एक फ्रांसीसी लेखक, कवि और विचारक, और सबसे अहम अति यथार्थवादी यानी सरियलिस्ट आंदोलन के संस्थापक।
हाँ, उसके मुख्य नेता। उन्हें तो मजाक में या शायद इज्जत में अति यथार्थवाद का पोप भी कहा जाता था।
हाँ, कहा जाता था। और उनका जो सफर था वो भी बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने शुरुआत की थी मेडिकल की पढ़ाई से।
अच्छा, मेडिकल से?
हाँ, खास तौर पर मनोरोग विज्ञान, मतलब साइकेट्री में। और फिर पहले विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने फौज के अस्पतालों में काम किया। वहां उनका सामना हुआ उन सैनिकों से जो युद्ध के भयानक मानसिक आघात से गुजर रहे थे,
जिसे शेल शॉक कहते थे।
हाँ बिल्कुल, शेल शॉक।
और यहीं इसी तजुर्बे के दौरान उनकी मुलाकात हुई सिगमंड फ्रॉयड के विचारों से।
सही, फ्रॉयड मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस के जनक, उनके सिद्धांत जैसे सपनों का विश्लेषण करना।
हाँ, और वो मुक्त साहचर्य वाली तकनीक, फ्री एसोसिएशन।
हाँ, कि बिना किसी रोक टोक के मन में जो आए बस बोलते जाओ। इन चीजों ने ब्रेटन को बहुत बहुत प्रभावित किया। उन्हें लगा जैसे फ्रॉयड ने अवचेतन मन, मतलब अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक रास्ता खोज लिया है।
एक तरह से वैज्ञानिक आधार मिल गया उनकी कलात्मक सोच को।
बिल्कुल, अति यथार्थवाद से पहले ब्रेटन दादा आंदोलन से भी जुड़े थे।
हाँ, दादावाद, वो तो बड़ा ही अराजक आंदोलन था, युद्ध की बर्बादी से निकला हुआ, कला विरोधी।
हाँ, वो हर तरह की परंपरा और कला को नकारते थे। लेकिन ब्रेटन को लगा कि दादा सिर्फ तोड़फोड़ तक ही सीमित है, उसमें कुछ नया बनाने की, रचने की बात नहीं है।
तो वो कुछ ज्यादा रचनात्मक ढूंढ रहे थे।
हाँ, वो मन की गहराइयों को समझने के लिए एक ज्यादा व्यवस्थित, एक ज्यादा सकारात्मक रास्ता चाहते थे।
तो ये जो मिश्रण था, मनोरोग विज्ञान की समझ, कवि वाली संवेदनशीलता और एक तरह का क्रांतिकारी जुनून, इन सब ने मिलकर ब्रेटन को वो शख्स बनाया जिसने अति यथार्थवाद को गढ़ा।
सही कहा, वो सिर्फ आंदोलन का ब्यौरा नहीं दे रहे थे, वो उसे बना रहे थे, उसके नियम तय कर रहे थे।
अब आते हैं किताब पर, अतिवास्तववाद के घोषणा पत्र। ये असल में कोई एक किताब नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कई लेखों, भाषणों, निबंधों का एक संग्रह है जो ब्रेटन ने करीब 20 साल के दौरान लिखे, 1924 से लेकर 1942 तक।
अच्छा, 20 साल?
हाँ, और ये सारे दस्तावेज मिलकर अति यथार्थवाद के जन्म की, उसके विकास की और समय के साथ उसमें जो बदलाव आए उसकी पूरी कहानी कहते हैं।
तो इसका मकसद क्या था, मतलब क्यों लिखे गए ये घोषणा पत्र?
देखिए, मकसद साफ था, अति यथार्थवाद को औपचारिक रूप से परिभाषित करना, उसके पीछे का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उसे समझाना
और उसके तरीके बताना।
हाँ,
कि ये कैसे किया जाए, कला और समाज के पुराने ढर्रों से आजादी का ऐलान।
बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी विचार था इंसान के मन को तर्क, समझदारी और समाज के बनाए नियमों की कैद से पूरी तरह आजाद करना।
ये बहुत बड़ी बात थी उस समय।
ब्रेटन मानते थे कि हमारा जागा हुआ, सोचने समझने वाला दिमाग, मतलब कॉन्शियस माइंड, वो असल में हमें बांधता है, वो हमारे अंदर की असली ज्यादा ताकतवर दुनिया यानी अवचेतन मन को दबा देता है।
तो उनके हिसाब से असली शक्ति कहाँ थी? सपनों में?
हाँ, उनके हिसाब से सपने, हमारी अधूरी इच्छाएं और बिना किसी रोक टोक के बहते विचार, ये ज्यादा ऊंची और सच्ची मानसिक अवस्थाएं।
तो लक्ष्य क्या था इन दोनों को मिलाना?
बिल्कुल, अति यथार्थवाद का लक्ष्य था इस अंदरूनी दुनिया और बाहरी दुनिया को मिलाकर एक नई बेहतर हकीकत बनाना, जिसे उन्होंने नाम दिया अति वास्तविकता,
सुरियालिटी।
सुरियालिटी ये उस दौर के पश्चिमी समाज की जो निराशा थी, जो खोखलापन था, उसका एक जवाब था। उन्हें लगता था कि तर्क और मशीनी सोच ने इंसान की आत्मा को कुचल दिया है।
तो ये उस खास समय और माहौल का भी नतीजा था?
हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जो माहौल था उसने इसमें बड़ी भूमिका निभाई।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, किताब के कुछ अहम हिस्सों को देखते हैं। आपने कहा ये अलग अलग समय पर लिखे गए लेख हैं।
हाँ, तो हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात करते हैं। शुरुआत होती है पहले घोषणा पत्र से, जो 1924 में आया।
ये तो नींव है ना, फाउंडेशनल चार्टर।
बिल्कुल, यहीं से ब्रिटेन जोरदार हमला बोलते हैं पश्चिमी समाज के यथार्थवाद यानी रियलिज्म और तर्कवाद यानी रैशनलिज्म पर। वो कहते हैं कि जो ये व्यवहारिकता है, ये जो हर बात में लॉजिक ढूंढना है, इसने कल्पना का गला घोंट दिया है, और वो इसका श्रेय फ्रॉइड को देते हैं।
कि फ्रॉइड ने दिखाया कि सपने बेकार नहीं है।
सही, कि वो इंसान के तजुर्बे का बेहद जरूरी हिस्सा है। ब्रेटोन तो यहाँ तक कहते हैं कि स्वप्न सर्वशक्तिमान है, मतलब सपनों में ही असली ताकत है।
और यहीं पर वो मशहूर परिभाषा आती है यथार्थवाद की, थोड़ी भारी भरकम है पर अहम है।
हाँ, वो कहते हैं अति यथार्थवाद शुद्ध मानसिक स्वचालन, साइकिक ऑटोमेटिज्म, जिसके द्वारा विचारों की वास्तविक कार्य प्रणाली को व्यक्त करने का इरादा है।
तर्क के किसी भी नियंत्रण के बिना किसी भी सौंदर्य या नैतिक चिंता से मुक्त।
सुनने में मुश्किल लगता है पर मतलब सीधा है। मन में जो कुछ भी अपने आप बिना सोचे समझे आ रहा है, उसे हूबहू लिख डालो, बिना किसी सेंसरशिप के, बिना ये सोचे कि ये अच्छा है या बुरा, सुंदर है या नहीं।
तो इसका तरीका क्या बताया उन्होंने?
मुख्य तरीका है ऑटोमेटिक राइटिंग। हाँ। स्वचालित लेखन।
अच्छा, कैसे करते हैं इसे?
ब्रिटेन सलाह देते हैं, शांत बैठो, दिमाग खाली करो और बस लिखते जाओ, जितनी तेजी से हो सके, बिना रुके, बिना सुधारे, बिना सोचे कि क्या लिख रहे हो।
और माना जाता है कि इससे सीधे अवचेतन मन की आवाज कागज पर उतरती है।
हाँ, यही मान्यता है। और ये घोषणा पत्र अद्भुत यानी द मार्वेलस की वकालत करता है, वो सुंदरता जो अजीब चौंकाने वाले संयोगों और कल्पनाओं में मिलती है।
साधारण में असाधारण।
बिल्कुल,
पहले घोषणा पत्र के साथ ही एक और चीज जुड़ी है, घुलनशील मछली, सोल्यूबल फिश, 1924। ये क्या है?
ये कोई सिद्धांत नहीं है बल्कि उसका एक प्रैक्टिकल डेमो है। इसमें 32 छोटे छोटे गद्दी के टुकड़े हैं,
बिना शीर्षक के।
हाँ, बिना शीर्षक के, और ये पूरी तरह ऑटोमेटिक राइटिंग से लिखे गए हैं। इनमें कोई कहानी नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस सपनों जैसी अजीब, कभी कभी डरावनी और चौंकाने वाली छवियां हैं और बातें हैं।
जैसे?
कुछ उदाहरण, जैसे दो टुकड़ों में कटा हुआ आदमी, स्पंज से बने परिदृश्य, घुलने वाली घड़ियां, ऐसी चीजें। इसका मकसद पाठक को ये दिखाना था कि जब तर्क का पहरा हटता है तो विचार असल में कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं।
अच्छा, तो ये सबूत था उनकी थ्योरी का?
हाँ, एक तरह से।
तो ये था पहला घोषणा पत्र, मन की आजादी, ऑटोमेटिक राइटिंग, सपने, अद्भुत। लेकिन फिर आया दूसरा घोषणा पत्र करीब 5 साल बाद, 1929-30 में।
हाँ, और माहौल बदल चुका था, ब्रिटेन के तेवर भी बदल गए थे। ये दूसरा घोषणा पत्र ज्यादा आक्रामक था, ज्यादा राजनीतिक था।
मतलब अब सिर्फ कला की बात नहीं थी?
नहीं, अब बात क्रांति की थी। ब्रिटेन यहाँ अति यथार्थवाद को सामाजिक और राजनीतिक क्रांति से, खासकर मार्क्सवाद से जोड़ने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, मार्क्सवाद से?
हाँ, वो कहते हैं कि अति यथार्थवाद का मकसद सिर्फ मन की खोज करना नहीं है, बल्कि जैसे कवि रिम्बॉर्ड ने कहा था, जिंदगी बदलना है, और इसके लिए समाज के खिलाफ विद्रोह जरूरी है।
जिंदगी बदलना, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है।
बिल्कुल, और यही वो सर्वोच्च बिंदु का विचार भी लाते हैं, मन की एक ऐसी काल्पनिक अवस्था जहां सारे विरोधाभास जैसे जिंदगी और मौत, हकीकत और ख्वाब मिट जाते हैं, वो विरोधाभास नहीं रहते।
ये तो बहुत गहरा फलसफा है, लेकिन आपने कहा कि ये घोषणा पत्र आक्रामक था।
हाँ, इसका लहजा बहुत सख्त है, लगभग आमिराना जैसा, ब्रेटन अपने ही पुराने साथियों पर, जिन पर उन्हें शक था कि वो आंदोलन की भावना से भटक गए हैं, उन पर तीखे हमले करते हैं।
मतलब आंदोलन में फूट पड़ रही थी?
हाँ, कुछ हद तक। ये हिस्सा अपने बहिष्कारों के लिए भी जाना जाता है, और हाँ, यहीं पर वो बेहद विवादास्पद चौंकाने वाली बात भी कहते हैं।
वो गोली चलाने वाली बात?
हाँ, कि सबसे सरल अति यथार्थवादी कृत्य है सड़क पर उतरना, हाथ में पिस्तौल लेकर और भीड़ में आंख बंद करके गोली चलाना।
ये तो भयानक है।
लेकिन जाहिर है इसे शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। ये हत्या का आह्वान नहीं था, ये समाज के सड़े गले नियमों, बुर्जवा व्यवस्था के खिलाफ एक चरम अराजक विद्रोह का एक बहुत हिंसक रूपक था। ये दिखाता है कि ब्रिटोन व्यवस्था से कितने ज्यादा खफा थे, कितनी नफरत थी उनमें।
मतलब ये एक मेटाफर था, लेकिन बहुत शक्तिशाली और खतरनाक।
बिल्कुल।
और फिर तीसरा पड़ाव आया 1942 में, तीसरे अति यथार्थवादी घोषणा पत्र की प्रस्तावना या नहीं। ये तब लिखा गया जब ब्रिटोन न्यूयॉर्क में थे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान।
हाँ, निर्वासन में।
दुनिया तबाह हो रही थी,
तो यहाँ ब्रिटोन का लहजा पहले के घोषणा पत्रों की तुलना में ज्यादा गंभीर है, ज्यादा चिंतनशील है।
तो क्या वो अपने पुराने विचारों से हट गए थे?
नहीं, वो मूल सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं, खासकर ऑटोमेटिज्म के महत्व पर फिर से जोर देते हैं। लेकिन अब वो एक बड़ी नई बात कहते हैं।
वो क्या?
वो कहते हैं कि इस टूटी हुई दुनिया में इंसानियत को जीने का मकसद देने के लिए एक नए सामूहिक मिथक, कलेक्टिव मिथ की जरूरत है। कोई नई कहानी, कोई नया विश्वास जो सबको जोड़ सके।
और अति यथार्थवाद इसमें मदद कर सकता है?
हाँ, उनका मानना था कि अति यथार्थवाद, क्योंकि वो मन की गहरी परतों तक, अवचेतन की संरचनाओं तक पहुंच सकता है, वो इस नए मिथक को गढ़ने में खास भूमिका निभा सकता है।
तो अब आंदोलन का लक्ष्य और बड़ा हो गया?
हाँ, अब अति यथार्थवाद सिर्फ व्यक्तिगत आजादी या सामाजिक विद्रोह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी इंसानियत की आत्मा को बचाने का, उसे एक नया अर्थ देने का एक बड़ा, ज्यादा पौराणिक प्रोजेक्ट बन गया था।
वाह, तो ये तो काफी लंबा और गहरा सफर रहा अति यथार्थवाद का, जैसा इन घोषणा पत्रों में दिखता है।
हाँ, बिल्कुल।
तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो कुछ मुख्य संदेश या थीम क्या निकल कर आते हैं? अति यथार्थवाद असल में हमें क्या सिखाना चाहता है?
देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात तो यही है, अवचेतन मन और सपनों की प्रधानता। हमारी असली सच्चाई, इच्छाएं, रचनात्मकता सब वहीं छुपी हैं। सपने बेकार नहीं, बल्कि हकीकत का एक बेहतर रूप है।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा, तर्कवाद और यथार्थवाद का पुरजोर खंडन। लॉजिक, समझदारी और बाहरी दुनिया की नकल करने वाली कला अति यथार्थवाद इन सबके सख्त खिलाफ है। वो तो पागलपन, बचपना या मन की किसी भी ऐसी स्थिति को बेहतर मानता है जो तर्क के काबू से बाहर हो।
ये तो काफी रेडिकल सोच है।
है। तीसरी बात, मानसिक स्वचालन यानी ऑटोमेटिज्म मुक्ति की कुंजी है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि दिमागी सेंसरशिप से आजाद होने का एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक तरीका है। बिना सोचे समझे लिखने या बनाने से हम सीधे विचारों के स्रोत तक पहुंच सकते हैं।
चौथा शायद वो अद्भुत वाला विचार है, द मार्वेलस।
हाँ, बिल्कुल, अद्भुत की खोज। अति यथार्थवाद पारंपरिक खूबसूरती के पीछे नहीं भागता, उसकी सुंदरता है चौंकाने वाली, अजीब, अप्रत्याशित चीजों में। वो लॉट्रेमोंट की मशहूर मिसाल, एक विच्छेदन में इस पर एक सिलाई मशीन और एक छाते की संयोगवश मुलाकात।
हाँ, ये इमेज दिमाग में बैठ जाती है।
और यही वो विचार आता है ब्रिटोन का, अद्भुत हमेशा सुंदर होता है, वास्तव में केवल अद्भुत ही सुंदर होता है। ये हमें रोजमर्रा की साधारण चीजों में भी असाधारण देखने के लिए उकसाता है।
जैसे भारत में हम देखते हैं कभी कभी गली के नुक्कड़ पर कोई ऐसा नजारा दिख जाता है, या दो बिल्कुल बेमेल चीजें साथ दिख जाती हैं, वो शायद अद्भुत है।
हाँ, बिल्कुल, वही है अद्भुत। और पांचवा और आखिरी मुख्य संदेश, कला सिर्फ कला के लिए नहीं, बल्कि क्रांति के लिए एक उपकरण है।
अच्छा, क्रांति के लिए?
हाँ, अति यथार्थवाद दिस से एक विद्रोही आंदोलन है। पहले ये विद्रोह मन के अंदर होता है, व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन ब्रिटेन मानते थे कि ये सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की लड़ाई से अलग नहीं है।
मतलब मन को आजाद करना पहला कदम है समाज को बदलने की तरफ।
बिल्कुल, पहले अपने मन को आजाद करो, उन दमनकारी ढांचों, परिवार, धर्म, पूंजीवादी राज को पहचानो जो तुम्हें रोकते हैं, फिर उन्हें चुनौती दो। यही वो दूसरा विवादास्पद उद्धरण प्रासंगिक हो जाता है, सबसे सरल अति यथार्थवादी कृत्य, वो समाज की स्थापित व्यवस्था के प्रति चरम नफरत और उसे तोड़ने की इच्छा का प्रतीक था।
हाँ, ये बात आज भी सोचने पर मजबूर करती है। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो सामाजिक दबाव महसूस करते हैं ना। अपनी इच्छाओं और समाज की उम्मीदों के बीच का तनाव
बिल्कुल महसूस करते हैं।
तो अति यथार्थवाद हमें उन दबावों पर सवाल उठाने की हिम्मत देता है, अपनी असली आवाज सुनने की।
हाँ, और ये भी याद दिलाता है कि सुंदरता हमेशा शांत और सुखद नहीं होती। ब्रेटन का एक और विचार है ना, सौंदर्य अक्षेपजनक होगा या होगा ही नहीं।
कन्वल्सिव मतलब झिंझोड़ने वाला।
हाँ, जो हिला दे। असली सुंदरता वो है जो हमें झिंझोड़ दे, बेचैन कर दे, स्थिर ना रहने दे। वो आरामदायक नहीं होती।
और इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या था, वो सपना और वास्तविकता वाला विचार?
हाँ, वो उनका दार्शनिक लक्ष्य था। मेरा मानना है कि इन दो अवस्थाओं, स्वप्न और वास्तविकता का भविष्य में समाधान होगा। एक प्रकार की पूर्ण वास्तविकता, एक अति यथार्थता में। मतलब एक दिन आएगा जब सपने और हकीकत मिलकर एक हो जाएंगे और एक नई, ज्यादा ऊंची सच्चाई बनेगी।
ये सब सुनने में बहुत दिलचस्प है, पर थोड़ा अमूर्त भी लगता है। क्या इन विचारों का हमारी आज की जिंदगी में, मतलब रोजमर्रा के जीवन में, कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल हो सकता है?
मुझे तो लगता है बिल्कुल हो सकता है। शायद ठीक उसी तरह नहीं जैसे ब्रेटन ने कल्पना की थी, पर इनके पीछे का जो मूल विचार है, जो स्पिरिट है, वो आज भी बहुत काम की है।
कैसे? कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
जरूर। जैसे पहला, अपनी क्रिएटिविटी को खोलने के लिए। वो जो ऑटोमेटिक राइटिंग या फ्री राइटिंग का सिद्धांत है, वो आज भी ब्रेनस्टॉर्मिंग या नए आइडिया सोचने में बहुत मददगार है।
अच्छा, कैसे?
आप बस 10-15 मिनट के लिए टाइमर लगाइए और बिना रुके, बिना सोचे समझे लिखते जाइए जो भी मन में आ रहा है। व्याकरण की चिंता मत कीजिए, स्पेलिंग की चिंता मत कीजिए, बस लिखिए। आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कैसे अनोखे विचार, कनेक्शन बाहर आते हैं जिन्हें आपका तार्किक दिमाग शायद दबा देता है।
हाँ, ये तो किसी भी काम में आ सकता है, चाहे कोई लिखता हो, पेंट करता हो, या फिर बिजनेस में नए आइडिया सोच रहा हो।
बिल्कुल। दूसरा, अपनी बनी बनाई सोच और रूटीन को चुनौती देना। अति यथार्थवाद हमें सिखाता है कि अपनी आदतों, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाओ। क्या हम कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वाकई सबसे अच्छा तरीका है, या बस इसलिए कि हमेशा से करते आए हैं? क्या हमारे लक्ष्य सच में हमारे अपने हैं, या कहीं समाज के दबाव में तो नहीं चुन लिए?
ये हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कहता है।
हाँ। तीसरा, जिंदगी में होने वाले संयोगों और अवसरों को अपनाना। वो जो ऑब्जेक्टिव चांस की बात थी, मतलब कभी कभी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो लगती तो महज इत्तेफाक है, पर उनमें शायद कोई गहरा मतलब या कोई इशारा छुपा हो। उन्हें बस यूं ही खारिज करने के बजाय हम उन पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं।
खुला दिमाग रखना है ना।
हाँ, बस खुला दिमाग रखना। चौथा, सपनों की शक्ति का उपयोग करना। ब्रेटन सपनों को इतनी अहमियत देते थे। हम शायद रोज रात को फ्रॉयड की तरह सपनों का विश्लेषण न करें, पर उन पर थोड़ा ध्यान तो दे ही सकते हैं। कभी कभी हमारे सपने हमारी अंदरूनी चिंताओं, इच्छाओं या अनसुलझे सवालों की तरफ इशारा करते हैं।
सपनों की डायरी रखना शायद इसमें मदद कर सकता है।
हाँ, बिल्कुल। और पांचवा, अभिनव समस्या समाधान, यानी इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अति यथार्थवादियों का तरीका था दो बिल्कुल अलग, असंबंधित चीजों को एक साथ रखकर एक चौंकाने वाली नई इमेज बनाना। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एक मॉडल हो सकता है।
कैसे?
जब आप किसी मुश्किल में फंसे हों और कोई सीधा हल ना दिख रहा हो, तो सोचिए क्या दो बिल्कुल अलग, दूर के विचारों या तरीकों को मिलाकर कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित समाधान बन सकता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का एक बहुत क्रिएटिव तरीका है।
वाह, तो ये तो काफी प्रैक्टिकल बातें निकल आईं अति यथार्थवाद से।
हाँ, मतलब अगर हम उसके पीछे की भावना को समझें
तो कुल मिलाकर अति वास्तववाद के घोषणा पत्र से सबसे बड़ा सबक, सबसे मूल्यवान बात क्या लगती है आपको?
मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक ये है कि जिसे हम अपनी वास्तविकता या असलियत समझते हैं, वो पूरी कहानी नहीं है, वो सिर्फ एक हिस्सा है। हमारे अंदर एक पूरी विशाल दुनिया है, सपनों की, कल्पनाओं की, अवचेतन की, जिसे हमें तर्क और व्यावहारिकता के नाम पर अनदेखा करना सिखाया गया है। ब्रेटन हमें उस अंदरूनी दुनिया को फिर से खोजने, उसे महत्व देने और उसे बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए कहते हैं।
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा असरदार रही, या कहूं कि आश्चर्यजनक रही, वो ये कि अति यथार्थवाद सिर्फ एक कला आंदोलन नहीं था, ये जीने का एक पूरा दर्शन है, आजादी की, आश्चर्य की, और एक गहरी छिपी हुई सच्चाई की लगातार खोज।
हाँ, बिल्कुल।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारा जो तर्कवादी मन है, वो सिर्फ एक औजार है मालिक नहीं। और सबसे बड़ी रचनात्मक सफलताएं तब मिलती हैं जब हम अपने अंदर के उस आलोचक को, उस सेंसर को शांत करना सीखते हैं और अवचेतन की गहरी धाराओं को सुनने की कोशिश करते हैं।
और ये भी कि सच्ची मुक्ति, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक, वो एक क्रांतिकारी कार्य है। अपनी सोच और अपनी धारणा को बदलना ही अपने आसपास की दुनिया को बदलने की दिशा में पहला कदम है। ये हमें उन सभी परंपराओं, नियमों या दीवारों पर सवाल उठाने की हिम्मत देता है जो हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक संभावनाओं को सीमित करती हैं।
सही कहा। इस पुस्तक का जो अनूठा मूल्य है वो शायद इसी बात में है कि ये बिना किसी लाग लपेट के वास्तविकता की पूरी तरह से नई कल्पना करने की मांग करती है।
हाँ, और इसीलिए ये मानव कल्पना की सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए एक कालातीत, एक हमेशा प्रासंगिक रहने वाला आवाहन है। भले ही ये विचार लगभग 100 साल पुराने हो गए हों, इनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है।
बिल्कुल। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए तगत फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।